क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा करजोड़ नमन। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें आप समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी सचिवालय के निर्देशन में हम कार्यक्रम क्षितिज देश विदेश से आने वाले हमारे मेहमानों का साक्षात्कार अपने कार्यक्रम क्षितिज में आप लोगों से करवाते हैं, जो हिंदी भाषा और हिंदी से जुड़े हुए जो भी विषय होते हैं उन्हें हम अपने इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है, हमारे साथ आज एक और मेहमान जो भारत से आए हुए हैं, आप हैं डॉक्टर जवाहर कर्नावट, जो अगर मैं उनका परिचय दूं, वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए अनिवार्य बन जाता है कि हम उनका परिचय जो है अवश्य अपने श्रोताओं को बताएं कि आप मुंबई के बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति विभाग के सलाहकार भी रह चुके हैं, हिंदी भवन भोपाल से प्रकाशित होने वाली अक्षरा पत्रिका के प्रबंध संपादक भी रह चुके हैं और हैं भी, और हाल ही में सबसे बड़ी बात जो हमारे श्रोताओं को आकर्षित करेगी वो कि हाल ही में 2023 में फिजी में लगे विश्व हिंदी सम्मेलन में आप सम्मान से सम्मानित किए गए। श्रोताओं, इससे भी ज़्यादा उनका परिचय है, मैं जितना बोलती जाऊंगी, लेकिन हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, क्षितिज कार्यक्रम का समय बहुत ही संक्षिप्त होता है, और जब ऐसे महानुभव हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी उनसे ही क्यों ना हम उनके बारे में पूछकर आज का विषय जो हमारा संचार का है कि संचार और हिंदी पत्रकारिता, तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगी। सबसे पहले हम डॉक्टर जवाहर कर्नावट का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
जैसे कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि भारत से आप आए हैं और दो दिवस की जो हिंदी विश्व सचिवालय में हमारी जो एक वर्कशॉप होने वाली है जी, उसमें संचार को लेकर आप आए हैं, और हमारा आज का विषय भी जो है संचार और पत्रकारिता पर है
जी। जी,
सबसे पहले मैं आपसे अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहूंगी डॉक्टर कर्नावट जी कि संचार और पत्रकारिता में क्या संबंध है।
देखिए, आप जानती हैं कि संचार के बहुत सारे माध्यम हैं।
बिल्कुल।
और वो एक तरह से हमारा अंतर वैयक्तिक संचार भी होता है जब हम दो लोग बात करते हैं, उसके बाद समूह संचार भी होता है, लेकिन जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम पत्रकारिता है। और आप जानते हैं कि इस पत्रकारिता का इतिहास, खासकर हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, तो बहुत पुराना है। और मैं आपको बता दूं कि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड पहला अखबार जुगल किशोर शर्मा जी ने कलकत्ता से निकाला था, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 200 वर्ष 2026 में पूरे होने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण संचार का माध्यम बनता गया, और इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि हमारे देश के लाखों लोगों ने एक नई तरह की भाषा हमारे सामने आई, और ये संचार का ऐसा माध्यम रहा जिसके माध्यम से चाहे हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हों, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हों, या यूं कहा जाए कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो, उस सब में भी इस पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस कारण से, और एक तरह से ये सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम भी रहा है, तो इसलिए इस कारण से ये संचार का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम अन्य सभी माध्यमों में पत्रकारिता ही है।
आप इस बात से तो सहमत होंगे डॉक्टर कर्नावट कि आज बदलते समय के दौर में संचार के बहुत से नए रूप, नए माध्यम जो हैं वो उभर कर आए हैं
जी। जी।
और ऐसे में कहीं आप नहीं समझते कि पत्रकारिता का जो महत्व है या कम हुआ है या थोड़ा सा फीका पड़ा है या उस पर कोई असर पड़ा है?
देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब नए माध्यम आए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, या अब न्यू मीडिया भी आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तब ऐसा लग रहा था कि अब ये जो हमारी पत्रकारिता है, खासकर मुद्रित पत्रकारिता, प्रिंटेड पत्रकारिता है, वो शायद पीछे हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे, खासकर मैं, चूंकि एक हिंदी का मुख्य केंद्र तो भारत है, तो भारत के आप वो अगर आंकड़े देखेंगे तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ा, लेकिन उससे अधिक तेजी से वो हिंदी पत्रकारिता आज भी लगातार बढ़ रही है। वो आंकड़े आपके सामने हैं, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका उसके कई कारण भी हैं कि देखिए पहले भारत में शिक्षा का जो प्रतिशत था या प्रसार था वो कम था, साक्षरता कम थी, लेकिन वो साक्षरता जैसी बढ़ती गई हिंदी बेल्ट में खासकर वो साक्षरता बढ़ी तो उन लोगों ने समाचार पत्र पढ़ना प्रारंभ किया, तो एक नया समूह हिंदी पत्रकारिता के साथ जुड़ता गया और उसके साथ जो आपने कहा कि वो एक चुनौती अवश्य थी, लेकिन वो चुनौती का लगातार सामने करते हुए आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना आगे चल रहा है वो हिंदी पत्रकारिता भी उतनी लगातार आगे चली जा रही है। और ये आपको भारत में देखिए दो संस्थाएं हैं, एक है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर जो समाचार पत्रों का पंजीयन करता है और दूसरा है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इन दोनों के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 10 सालों में भी हिंदी पत्रकारिता कितनी आगे बढ़ी है।
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आज की इस आधुनिक दौर में जो हमारे नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो ज़्यादा संचार के नए माध्यमों की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं बजाय कि वो पत्रकारिता की ओर जाएं, और शायद उनके लिए ये नए संचार के जो माध्यम हैं वो बहुत सहज बनते गए हैं, जबकि कोविड ने हमारे संचार पत्रकारिता के माध्यम को थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर किया था लेकिन नए आयाम उभर कर आए जैसे कि आपने कहा। ऐसे में हमारे जो नए युवक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि नई पीढ़ी जो है वो कंटेंट उस तरह से जो नया कंटेंट आ गया है सोशल मीडिया पर या जो इलेक्ट्रॉनिक है
वेबसाइट,
या सामने है वेबसाइट है, उस पर ज़्यादा है
मोबाइल,
लेकिन लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो एक अलग वर्ग है, लेकिन भारत जैसा वर्ग जहाँ पर आज भी आप समझिए कि अभी भी हमारे देश में जो शिक्षा का प्रतिशत है वो 75% है और उसमें भी जो साक्षर हैं, देखिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक साक्षर होना और एक शिक्षित होना, तो साक्षर लोगों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो आज प्रिंट मीडिया को ही लगातार पसंद करता है। नई पीढ़ी ने निश्चित रूप से अब तो वो अखबार भी पढ़ अपने मोबाइल पर अखबार
पढ़ लेते हैं,
है ना, तो वो उनका एक अलग वर्ग है लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं होगा। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे एक, मैं तो ये मानता हूँ कि ये संचार में आखिर वो पढ़ तो समाचार पत्र ही रहा है, तो उसका महत्व कम नहीं हुआ है समाचार पत्र का, लेकिन उसका जो माध्यम है वो बदल गया,
वो बदल गया
और निश्चित रूप से वो एक चुनौती है। लेकिन वो मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमने जो एक समय था जब जो सर्वाधिक प्रसार वाले 10 समाचार पत्रों में हिंदी का एक समाचार पत्र नहीं आता था अंग्रेजी के साथ, लेकिन आज जो 10 समाचार पत्र सबसे ज्यादा है उसमें 5 समाचार पत्र हिंदी के हैं सर्वाधिक प्रसार वाले और अंग्रेजी के पीछे ले गए, तो ये दोनों साथ साथ चलता रहेगा
समय का जो है।
और नई पीढ़ी जो है वो तो निश्चित रूप से जो आपने माध्यम बताया उस माध्यम को ही पसंद करेगी और ये तो नए समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार चलेगा, लेकिन ये समान रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों में या अन्य जगह भी चलता रहेगा।
जहाँ हम नई पीढ़ी, क्योंकि देखें आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी कितने, शायद मैं समझती हूँ 50% से अधिक लोग अभी भी पत्रकारिता के इस हार्ड कॉपी पर जो है वो निर्भर रहते हैं या पसंद करते हैं उसे, लेकिन अभी तो नई पीढ़ी का दौर है जैसे हम कह सकते हैं। संचार ने किसी हद तक उन्हें प्रभावित किया है और किसी हद तक उनको संचार को लेकर पत्रकारिता में बहुत बाधाएं भी आई हैं और कुछ गलतियों में भी वो पड़ जाते हैं, इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये बात बिल्कुल सही है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया है तो कितनी जिसको हम कहते हैं ना फेक न्यूज़, उसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी इन पर पड़ने लगा
बहुत ज्यादा।
और मैं आपको बता दूं इसलिए उनको आगाह करने की भी जरूरत है कि जो छपे हुए शब्द की महत्ता है वो कभी कम नहीं होगी,
ये
मैं आपको बता दूं
वो और प्रमाण के लिए बहुत,
क्योंकि वो जो होता है वो बड़ा तात्कालिक होता है
बिल्कुल,
और जब छपा हुआ शब्द होता है उसको बार बार तोला जाता है और उसके बाद जब
रह जाता है,
हाँ, और जब उसकी एक तरह से प्रमाणिकता जब परख ली जाती है उसके बाद उसको छापा जाता है अधिकांशतः। लेकिन वो जो मीडिया आ रहा है, जो न्यू मीडिया आ गया है या अलग मीडिया आ गया है, उसमें तो इस तरह से तात्कालिक रूप से खबरें दी जाती हैं कि वहां पर कई बार उसकी प्रमाणिकता प्रश्न, और एक तरह से देखिए आपने कई बार आपने देखा होगा उसका कितना नकारात्मक प्रभाव हुआ, कई जगह एक गलत खबर के कारण कहीं पर दंगे फसाद हो गए, कहीं पर व्यक्ति के बारे में
समाज में बहुत से
व्यक्तियों के बारे में गलत सूचनाएं दी गई, कई लोगों की प्रतिष्ठा पर आंच आई जबकि उनका ऐसा कोई व्यवहार नहीं था। तो इसके एक तरह से जो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, लेकिन उससे हमें नई पीढ़ी को आगाह करना पड़ेगा और निश्चित रूप से जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो पता भी चलता है कि ये हमारे लिए कितना
लाभकारी और कितना हानिकारक
भी है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी आपसे कि दो दिन का जो हिंदी सचिवालय की ओर से दो दिन का जो फोरम चलेगा उसमें संचार को लेकर आप क्या नए आयाम हमारे श्रोताओं के सामने जो है प्रस्तुत करना चाहेंगे?
देखिए, एक तो खासकर ये जो कार्यशाला है वो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें कुछ शिक्षक भी रहेंगे। तो एक तो जो आपने विषय बताया कि जनसंचार में हमारा पत्रकारिता का क्या महत्व रहेगा, और उसमें हमें ये भी दर्शाना है कि ये दोनों पत्रकारिता के मुद्दे हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। फिर पत्रकारिता में अनुवाद का कितना अधिक महत्व आज बढ़ गया है, वो अनुवाद के महत्व को भी हम रेखांकित करेंगे। क्योंकि आज देखिए, जो एक वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसमें हमें सारे विश्व की खबरों को भी लेना होता है और वहां पर जिस भाषा में हम रखना चाहते हैं तो उनको उस भाषा में किस तरह वो अच्छी तरह संप्रेषित कर सकते हैं, ये भी हमें उन्हें बताना है। दूसरा कि समाचार की एक, चाहे उसमें जो एक समाचार पत्र में अलग अलग विधाएं होती हैं, उन विधाओं का भी किस क्षेत्र में कितना अलग अलग महत्व है और वहां पर हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी इस कार्यशाला में हम बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण विषय जो मेरा शोध का विषय है कि जो हिंदी पत्रकारिता है वो पूरे विश्व में किस तरह रही है पिछले 125 सालों में विश्व के 25 देशों में, मैं उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि वो मेरा एक अलग तरह का कार्य है जो मैंने पिछले 18-20 सालों में पूरा किया है।
तो मुझे उम्मीद है कि जो ये दो दिन की कार्यशाला लगेगी इसमें हमारे विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और इसके अलावा जो हिंदी प्रेमी हैं जो इस कार्यशाला में जुड़ेंगे वो आपके पत्रकारिता के जो प्रयत्न आपने किए हैं, जो लोगों को दिया है, वे उससे जुड़ पाएंगे, उससे पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। और बाकी आपने कहा अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार की बात जो है वो हम अपने एक और प्रोग्राम में आपको जरूर उसमें आमंत्रित करेंगे। और आज की इस बातचीत से तो आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। समय, मैं पूछना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा है और कभी कभी ये सीमा जो है हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए रोकने का इशारा करती है। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने संचार के और पत्रकारिता के संबंध और उसके लाभ और हानि और हमारी नई पीढ़ी को किस तरह से हमें सचेत आना है, इस पर जो आपने थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा जो संकेत किया है, हम समझते हैं कि लोग जो हमें इस समय सुन रहे हैं ये कार्यक्रम क्षितिज से, वो इससे पूरे पूरा सहमत होंगे और इससे पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और दो दिन की कार्यशाला में भी हमारे जितने भी हिंदी प्रेमी हैं वो इससे जुड़ेंगे। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और अपने इस कार्यक्रम क्षितिज से हम आज्ञा चाहेंगे।
जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
श्रोताओ, एक और कड़ी तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।